ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
அவ தேக்கியே கி ஜப் யே சப் வஸ்து ஹை தோ இஸ்கி வியாபகதா சித் ஹோகி ஔர் சர்வகத ஹை, माने समस्त देश में है, ऐसा कोई देश नहीं है जहां यह न हो. यदि ये नहीं होगा तो देश ही सिद्ध न होगा. तो ये नित्य है, विभू है, सर्वगत है, सूक्ष्म. कल निवेदन कर रहा था यही प्रसंग में, इसी प्रसंग में सूक्ष्म की बात आपसे निवेदन कर रहा था कि ये सूक्ष्म अति सूक्ष्म है. जैसे उदाहरण के माध्यम से आपको ये बात बताई जा रही थी कि ये मैक रखा हुआ है, ये स्थूल है, इसकी ये नील और पीत रंग का, नील पीत रंग की जैसे सुस्पष्ट प्रतीति होती है, इस प्रतीति का जो प्रकाशक है ये बल्ब है. इस बल्ब के प्रकाश की प्रतीति उतनी सुस्पष्ट नहीं है जितनी मैक की, मोटे मैक की हो रही है. फिर इसमें नेत्र का भी प्रकाश आ रहा है, क्योंकि नेत्र के प्रकाश के बिना ये प्रकाश तो जड़ है ना, ये प्रकाश जड़ है. अंधकार इस प्रकार में, अंधकार और प्रकाश में कोई अंतर नहीं है. अंतर सिर्फ इतना है, नारायण आपसे निवेदन करूं पहले की समता क्या है. जड़त्व इन दोनों सम है, अंधकार भी जड़ है और प्रकाश भी जड़ है. कभी कभी तो तीव्र प्रकाश में व्यक्ति को नहीं दिखता है. यदि भेद मानते हो प्रकाश और अंधकार में कि अंधकार में दिखती नहीं वस्तु है तो प्रकाश में भी नहीं दिखती है. आपने सुना होगा भगवान ने जब विराट रूप दिखाया दुर्योधन की सभा में तो सबकी आंखें बंद हो गई थीं. तो प्रकाश अंधकार में क्या फर्क रहा. आइए, अपना तो इतना ही कथन है कि ये जड़त्व इन दोनों साम है, अंधकार भी जड़ है, प्रकाश भी जड़ है. हमारे नेत्र से जो ज्योति निकलती है वह ज्योति इस बाहर की भौतिक ज्योति और ये जो वस्तु है इसको आवृत करती है. अब आप बता सकते हो कि इसमें हमारे नेत्र का प्रकाश है. ये तो बता सकते हो कि बल्ब का प्रकाश इसमें है, पर हमारे नेत्र का भी प्रकाश यहां है ये आप नहीं बता सकते हो. क्यों कि सूक्ष्म है. तो जो सूक्ष्म वस्तु होती है वो होकर के भी प्रकाशित नहीं होती है. नेत्र की ज्योति से भी वह सूक्ष्म ज्योति है परमात्मा की, इसलिए वह सूक्ष्म हुआ तदव्ययम, और वह अव्यय हो गया. अव्यय कैसे हुआ कि भाई यदि किसी के अवयव होते हैं, जैसे हमारा शरीर है, हमारे अवयव होते हैं, इनके ह्रास विकास से हमारा ह्रास विकास होता है. या यूं समझ लीजिए कि जैसे राजा के कोष होता है, खजाना होता है, उसका ह्रास और विकास होता रहता है, माने घटना बढ़ना होता रहता है. कभी ज्यादा इनकम आ जाती है तो पैसा द्रव्य बढ़ जाता है कोष में, और कभी खर्च ज्यादा हो जाता है समाज में तो घट जाता है. तो अव्यय का अर्थ होता है कि एक रस रहने वाला, न व्यतीति अव्ययम. तो परमात्मा अव्यय है. यद भूत योनिम परिपश्यंत धीरा, और ये समस्त भूतों की योनि भी है. नारायण 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 नारायण. योनि माने कारण भी है समस्त भूतों का. अब देखिए ये सब विरोधी बातें हैं श्रुतियों में. जो दृश्य ही नहीं है, जो ग्राही ही नहीं है, जिसका गोत्र ही नहीं है, जिसका वर्ण नहीं है, वो सब भूतों की योनि है, वो सब भूतों का कारण है. तद्वेज तन्नेज तद्दूरे तदवंतिके. परमात्मा पास भी है, परमात्मा दूर भी है, परमात्मा नजदीक भी, परमात्मा दूर भी है, परमात्मा नजदीक भी है, परमात्मा चलता भी है, परमात्मा नहीं भी चलता है। अब आप देखिए ये बात कैसे संभव हो सकती है कि जो चलता है वो नहीं चलता है, जो दूर है वो पास कैसे हो सकता है। असभात अलव की करणी सपरियेगा छुक्क मकाय मब्बणम। मैं आपसे ये बात बताना चाहता हूं कि सक परियेगा छुक्क मकाय मब्बणम मसना बिरम शुद्ध मपाप विध्यम। स्नायु नहीं है, व्रण नहीं है, शरीर नहीं है, फिर भी कारण हो रहा है। देखो आप इसमें आश्चर्य की बात है कि नहीं। इस बात को धीर जो पुरुष होते हैं मने परमात्मा को देखो, परमात्मा धीरा पश्यन्ति किम पश्यन्ति तो यद भूतयोनिम, जो समस्त भूतों का कारण है उस समस्त भूतों के कारण को जो धीर पुरुष होते हैं। धीर का मतलब होता है धी बुद्धि ईरयति, जो बुद्धि को चलाता है, या यों कहिए जो बुद्धि में प्रकाश है जिसका। तो धीर का अर्थ हुआ जो ठहरा हुआ हो, जो टिका हुआ हो, जो दुनिया में दुनिया की वस्तु के साथ बह न रहा हो, जो जैसे हमारी विद्या और कामना और कर्म है, तो विद्या कामना और कर्म के अनुसार हम नारायण यहां बाहर बाहर भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो वो ठहरा हुआ जो तत्व है, स्थिर जो तत्व है, वह स्थिर बुद्धि से ही प्राप्त किया जा सकता है। चलते हुए यदि जीवन में तमाम वासनाएं होंगी, यदि जीवन में तमाम दृश्य होंगे, ये तमाम जीवन में ग्राही होंगे, तो अग्राही को हम ग्राही के बीच में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ग्राही माने दृश्य, हमारे मन में दुनिया के दृश्य भरे हुए हैं, उन दृश्यों के बीच में जो अदृश्य है परमात्मा है उसको नहीं देख सकते हैं। छोटा सा एक उदाहरण आप ले लीजिए, आप आकाश को परमात्मा का सहोदर मानते हैं, आकाश का भाई मानते हैं आकाश को, परमात्मा का, परमात्मा की आकाश व्यापक है, आप ये भी कहते हो, आप लोगों से हमने सुना है और हम समझ में भी ऐसे आ रहा है कि आकाश व्यापक है। यहां घड़ा हमने रख दिया है आपको, अब यदि आपसे पूछे कि घड़े में आकाश है कि नहीं तो आप कहेंगे कि हां है आकाश, पर यदि उसमें गेहूं डाल दिया जाए, किसी से पूछा जाए कि आकाश है कि नहीं, तब बिना विचार के उस आकाश जो पूर्ण आकाश है उसकी स्वाभाविक पूर्णता गेहूं भरने से निवृत्त हो जाएगी। गेहूं जब नहीं भरा गया था घट में, तब प्रतीत होता था कि घड़े में यह महाकाश गया हुआ है, विद्यमान है, गेहूं भर दिया तो लगता है आकाश निवृत्त हो गया। निवृत्त सा नहीं प्रतीत होता है, आप जैसे विचारशील बुद्धिमानों के लिए मैं नहीं कहता हूं, पर सामान्य व्यक्ति से पूछो कि आकाश में क्या, इसमें क्या है घड़े में, तो बोलेगा गेहूं। पूछो कि और क्या है तो और मना कर देगा कि और कुछ नहीं है। तो जैसे स्वाभाविक आकाश की पूर्णता गेहूं के दानों से निवृत्त हो जाती है, इसी प्रकार से यह शरीर घट में जो परिपूर्ण परमात्मा जिसे ब्रह्म, जिसे नित्य, जिसे विभु, जिसे अग्राही अवर्ण बोला जा रहा है, वह यहां विद्यमान है, पर नारायण उसकी प्रतीति क्यों नहीं होती है। उसकी प्रतीति इसीलिए नहीं होती है कि जिस प्रकार से स्थूल दृश्य पदार्थ बाहर सुस्पष्ट प्रतीत होता है, हमारे नेत्र आदि की ज्योति प्रतीत नहीं होती है, इसी प्रकार से सूक्ष्म होने के कारण दृश्य जो अंदर भरा हुआ है, दुनिया के जो दृश्य भरे हुए हैं, वो दृश्य स्थूल होते हैं, उनका स्फुरण बना रहता है। उसको प्रकाशित करने वाले अर्थात दृश्य को प्रकाशित करने वाला जो चेतन है, उसकी तो निवृत्ति सी हो जाती है। इसीलिए तो श्रुतियों में कितनी सुस्पष्ट बात कही है कि तमेव भान्तम् मनुभाति सर्वम्, आपके अंदर का दृश्य हो या बाहर का दृश्य हो, पहले परमात्मा की उपस्थिति होती है, बाद में वस्तु की उपस्थिति होती है। ये विचारशील या विवेकशील या संदमादि वैराग आदि से संपन्न व्यक्तियों को सुस्पष्ट बात समझ में आ जाती है। इनके अभाव में हम सुनते हैं तो ये बातें हमारी समझ में नहीं आती है। नहीं, परमात्मा जितना सुस्पष्ट है उतना और कोई सुस्पष्ट नहीं है। तो आपसे आप देखिए कि ये जो वस्तु दिखती है, वस्तु दिखती है तो विचार करिए कि किस में दिखती है। सिर्फ आंख से नहीं दिखती है, किसे दिखती है? आंख में जो परमात्मा की ज्योति है उस परमात्मा की ज्योति से दिखती है। जैसे उदाहरण के लिए ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, आप ऐसा कहते हो और हम भी ऐसा ही कहते हैं, बल्ब जल रहा है, पर हम कहते हैं बल्ब नहीं जलता है। विचार से मालूम पड़ेगा, विचार से ज्ञात होगा। आपातः यदि हम देखेंगे तो मालूम पड़ता है, समझ में आता है कि बल्ब जल रहा है, पर बल्ब जलता तो दुकान में भी जलता, तो बल्ब में क्या जल रहा है? नारायण। यदि बल्ब को हटा लिया जाए तो तब क्या जलेगा? बल्ब को हटा लिया जाए तो फिर विद्युत विद्यमान रहने पर भी बाहर प्रकट नहीं होगी। इसी प्रकार से जैसे बल्ब विद्युत को प्रकट करने का माध्यम है, उपकरण है, साधन है, परमात्मा ने भी क्या विचित्र बनाया है, इसी प्रकार से हमारी आंख आदि जो इंद्रियां हैं वह परमात्मा के प्रकाश को प्रकट करने का साधन है, ना कि आंख प्रकाश वाली है। तो तदव्ययम यद भूत योनि परिपश्यंत धीरा, जो धीर पुरुष हैं, धीर पुरुष हैं, जिनके जीवन में धैर्य है था, टिके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वही ये समस्त भूतों का जो कारण परमात्मा है, वही लोग इसको देखते हैं, दूसरे नहीं देखते हैं। क्यों नहीं दिखता है? आपसे ये निवेदन करूं कि आप क्या चाहते हो? आप और हम जब दुनिया चाहते हैं तो दुनिया देखेगी कि परमात्मा देखेगी? वासना जिसकी होगी, अर्थात कामना जिसकी होगी, जिसके संबंध में हम कर्म करेंगे, उसी के मनोरथ होंगे, उसी को सोचेंगे, वही हमारे अंदर दिखेगा। बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अपने श्रीमद् भगवद् गीता में एक बात कही है, आश्चर्यवत पश्चित कश्चिदेनम, आश्चर्यवत बदति चान्य आश्चर्यवत चैन मन श्रोणोति सुतप्यनम वेदन चैव कश्चित। इस परमात्मा के संबंध में आश्चर्य की तरह कोई कहता है, आश्चर्य है, और आश्चर्य की तरह कोई सुनता है और सुनकर के भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की नहीं समझ पाता है। तो अब परमात्मा के, ऐसे परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए अपने पूर्व की तैयारी भी होनी चाहिए। इसे साधन चतुष्टय वेदांत के ग्रंथों में आपने सुना होगा, साधन चतुष्टय है, साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, वैराग होना चाहिए, समदम उपरति आदि साधन होना चाहिए, मुमुक्षा होनी चाहिए। मुमुक्षा ही नहीं है व्यक्ति के जीवन में। एक निवेदन करूं, छोटी सी घटना बता दूं। एक गुरु जी अपने शिष्य के यहां गए हुए थे, शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं जीना नहीं चाहता हूं। गुरु जी ने कहा कि नहीं नहीं, आपका प्रारब्ध भी बाकी है, आराम से रहिएगा, मौज है घर में, सब कुछ है, आप ठीक, कोई तकलीफ तो आपको है ही नहीं, आप रहिए। बोले कि ना गुरुदेव, अब मुझे पूर्ण वैराग्य हो गया, मैं जीना नहीं चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा कि क्या चाहते हो फिर जीना नहीं चाहते हो? बोले मोक्ष चाहता हूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक जीवन अभी और होगा, इसके बाद मुक्ति होगी चाहोगे तो। महाराज, जब आप इतना जानते हो कि एक जन्म मुझे और मिलेगा तो क्या होऊंगा मैं, स्वाब बता दीजिए। बोले एक शूकर होगे, शूकर। अब वो कांप गए कि ना, गंदी नाली में रहने, जब इत्र के ढेर में मैं बैठने वाला, सुंदर सोफे सोफा सेट में बैठने वाला, मैं गंदी नाली में रहूंगा शूकर होकर के? ये जिंदगी तो बिल्कुल ही पसंद ना करूंगा। गुरुदेव ने कहा कि करो या ना करो, ये तो प्रारब्ध है, आपका जन्म तो जरूर होगा। अच्छा तो गुरुदेव ये बता दो कि मेरे लक्षण क्या होंगे, पहचान मेरी क्या होगी? बोले कि तुम्हारे सिर में सफेद सा दाग होगा, सबसे मोटे होगे। गुरुदेव ऐसा कह करके चले गए। उनके लड़के आए, लड़कों से कहा कि गुरुदेव ने ऐसी सी बात कही है, मैं शूकर की योनि में, नाली में जीना नहीं चाहूंगा, और मेरे सफेद सा दाग होगा, आप तलवार लेकर के मेरा सिर काट करके मुझे मार देना, मैं मुक्त हो जाऊंगा। सचमुच कुछ दिन के बाद उसका जन्म हुआ, सुअर हुआ। उस नगर में, उस गांव में उन्होंने खोज की तो जिस लक्षण जैसे बताए थे गुरुदेव ने, उस लक्षण का एक सुअर मिल गया। तलवार मारने के लिए उठाई, सुअर ने कहा रुको रुको, क्या बात है? बोले आप हमारे बाप हो ना, हम आपको मारने के लिए आए हैं, आपकी आज्ञा थी। बोले नहीं नहीं, सूर्यों के साथ आनंद से रह रहा हूं, मुक्ति भी चाह रहे थे। महाराज श्री के ग्रंथों में तो आश्चर्य की बात लिखी हुई है, कहते हैं कि एक जूता पहन करके कहीं गया हुआ था, और जब वो सत्संग करके बाहर निकला तो बोले हाय हाय, हमारे तो जूता ही खो गए। तो महात्मा ने कहा कि बताओ, एक छोटी सी मुक्ति तुम्हारे को सहन नहीं होती है, बड़ी सी मुक्ति कैसे सहन कर लोगे? तो ये धीर पुरुष जो सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने की, जिनके जीवन में टीस है, वेदना है, और दीप्त विवेक, जीवित विवेक है, ना रहे ना रहे, मरा हुआ विवेक नहीं, विवेक जिंदा चाहिए, ना रहे। हम देख रहे हैं दुनिया में कितनी कितने कितने कष्ट हैं, इन कष्टों को देख करके हमारे जीवन में ये विवेक उत्पन्न होना चाहिए कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, जब तक परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हमारे जीवन में न सुख मिल सकता है, न शांति आ सकती है। सुख शांति के लिए परमात्मा को प्राप्त करना जरूरी है। यहां किसी को सुख, किसी को शांति नहीं है। जो स्वाभाविक प्रकृति की तरफ से सुषुप्ति का सुख प्राप्त था आपको, वो भी चला गया नारायण, वो भी नहीं रहा। हर व्यक्ति सुषुप्ति चाहता है, सुषुप्ति में उसे विश्राम मिलता है, और विश्राम नहीं मिलता है, परमात्मा मिलता है। आद्यारण्यक में देखिए, उसमें वर्णन आता है कि एक बार चाहे सुअर होवे, चाहे कीट पतंग होवे, सब परमात्मा में, परमात्मा से हाथ मिला के आते हैं। रुरुवा मस्कोवा दंसोवा बराहोवा, रुरुहो बराहो दंस हो मच्छर हो मक्खी हो, सब परमात्मा में एक बार मिलकर के चले आते हैं। क्यों मिलकर के चले आते हैं? बोलते हैं कि वहां सुख नहीं था क्या? सुख तो था, लेकिन ये जो हमारी वासना है, पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है, उसके संस्कार हमको वहां से खींच करके फिर ले आते हैं। तो आप देखिए, परमात्मा की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो आपका स्वरूप ही है। प्रत्येक चैतन्य अभिन्न परमात्मा की अनुभूति आपको हो रही है, और होकर के भी नहीं हो रही है, तो उसका कारण यही है कि कुछ हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति की शर्तें हैं, वो शर्त को हमने पूर्ण किए बिना ही विचार कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारी बुद्धि में प्रतिष्ठित नहीं हो रहा। तो ये बात मैं ये योनिम पश्यन्ति धीराः इस शब्द से कह रहा हूं कि वो जो समस्त भूतों की योनि है धीर पुरुष उसे देखते हैं। धीर पुरुष जो अपने मैं को परमात्मा के साथ मिला देवे, जो अपने अभिमान को परमात्मा के अभिमान में मिला देवे, व्यक्ति को समष्टि में जो मिला देवे, या यूं कहे कि अपने को कुछ समझे ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, तो ऐसा धीर पुरुष परमात्मा को परिपश्यंत देख लीजिए। मैं तो नहीं कह रहा हूं, परमात्मा को देखता है वो। तो देखने का अर्थ ये नहीं होता है कि जैसे दृश्य हम देखते हैं इस प्रकार से परमात्मा दृश्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जो चीजें दृश्य होगी वो दो बातें दो जुड़ी होंगी उसके साथ, दो बात जुड़ी होगी, एक तो नश्वरता जुड़ी होगी, नश्वर होगी और जड़ होगी। जो देखी जाएगी वह जड़ होगी और परमात्मा जड़ नहीं है। और यहां बोलते हैं यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, समस्त भूतों की जो योनि है परमात्मा, उस परमात्मा को धीर पुरुष देखते हैं। तो परमात्मा क्या जड़ हो गया, परमात्मा क्या दृश्य हो गया? नहीं, यहां परिपश्यन्ति का अर्थ होता है ऐसी दृष्टि महापुरुषों की मिल जाती है, ऐसा परमात्मा की नारायण अनुभूति उनको हो जाती है कि जहां आंख खोलते हैं सिर्फ परमात्मा ही नजर आता है उनको। तो ये दुनिया विवेक के लिए होती है, अर्थात ये जो जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है उसको पहले विवेक करना पड़ता है जड़ चेतन का। जब परमात्मा की अनुभूति हो जाती है तो उसकी दृष्टि में परमात्मा के अलावा दूसरा कोई सिद्ध ही नहीं होता है। एक उदाहरण से, सर्प रस्सी है आपने देखा होगा, कभी मंद अंधकार में, तीव्र अंधकार में नहीं, तीव्र अंधकार होगा, यदि अधिक अंधकार होगा तो रस्सी ही न दिखेगी। और अधिष्ठान के बिन प्रतीतियां नहीं हुआ करती हैं, प्रतीति के लिए अधिष्ठान भी दिखना चाहिए। देखिए तो ये विचित्र परमात्मा की माया। तो जैसे रस्सी है, रस्सी में किसी को सर्प, किसी को दंडा, किसी को भू छिद्र, किसी को माला, किसी को कुछ, किसी को कुछ दिखता है वहां पर। यदि जिसने रस्सी को दिन करके देख रखा है और देखने का संस्कार है, अपनी आंख से देख रखा, अनुभव कर रखा है, वो जिसको विविध प्रकार से भाषित हो रही है उसके पास वो व्यक्ति आ जावे, उसे कहा जाए कि देखो माला पड़ा है, दंडा पड़ा है, भूचिद्र पड़ा है, तो वो बात यही कहेगा कि नहीं, यहां न माला है, न दंडा है, न भूचिद्र, कुछ नहीं है, इन इन रूपों में रस्सी ही प्रतीत हो रही है। इसी प्रकार से परमात्मा अधिष्ठान है और ये विविध रूपों में, जैसे अभी विभू कहा तो ये विभू परमात्मा ही प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा के संबंध में विरोधी बातें, कभी कहते हैं दिखता है, कभी कहते हैं नहीं दिखता है। अभी इसी में देख लीजिए, अदृश्य कहा, फिर परप्रसन्न धीरा कहा, अभी मैंने आपको सुनाया तद्देजत तन्नेजत तदूरे तदवंध के, वो चलता है नहीं भी चलता है। मनुष्यो जब यह कह रहे हैं मन से ज्यादा दौड़ता है, तो जो जिसका निषेध जिसकी गति का कर रहे हैं उसको उसकी गति का वर्णन किया जा रहा है, ये सब अद्भुत बातें हैं। तो ये सब नारायण संप्रदाय परंपरा से और संत परंपरा से ये बातें समझ में आती हैं। तो अब अगला प्रसंग आपकी सेवा में कल निवेदन करूंगा, क्योंकि समय हो रहा है। आप 28:29 मिनट में बंद करने को कहते हैं, 28:29 मिनट हो गया इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति, शांति।